आसम
ततो जयम उदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी इस दिल्ली के गीता कॉलोनी के भक्तवृंद जो वहाँ आज प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित है, सभी को मैंने इस्कन की तरफ से विशेष स्वागत करना चाहूँगा। हरे कृष्ण। तो जैसे आप लोग के सामने ही कुछ दिन पहले चर्चा हुआ था कि एक दो तीन दिन का एक छोटा सेशन कुछ लेने के लिए, तो मैंने प्रभु जी को अनुरोध किया कि क्या आदेश आपका है। बड़े प्रभु जी तो थे नहीं, आज ही दर्शन हुआ उनका, तो उन्होंने बोले हम अभी डिसाइड नहीं करेंगे, बातचीत करके बताएंगे, मैसेज करेंगे। लेकिन मैसेज में भी इंडीसीसी मैसेज आया कि कई बोलते हैं कि नाम के ऊपर बोलो, कोई बोलते हैं राम के ऊपर बोलो, कोई बोलते हैं चैतन्य चरितामृत बोलो, कोई बोलते हैं ये बोलो। मैं बोला चलो, जब दो जन का झगड़ा होता है तीसरा फायदा उठाता है, तो आप लोग डिसीजन नहीं कर पाते तो फिर मैं अपना करूँगा ना। हाँ फिर ठीक है, आप अपना। तो फिर मैं किसी का नहीं सुना, मैं एक अलग से चीज़ कुछ बोलना चाहूँगा। शायद आप लोग ने कहीं सुने होंगे, आप लोग सब बड़े चढ़े भक्त हों, तो जो विषय को हम शुरू करेंगे वो विषय तो शुरू करेंगे पूरा पूर्ण कब होगा भगवान जानते हैं, लेकिन इस विषय का जो विषय को हम चर्चा करना चाहेंगे, इस विषय का रचना श्री चैतन्य महाप्रभु के, जिस कलिजुग के हम जैसे पतित जीवों पर दया करने के लिए साक्षात कृष्ण राधारानी के साथ प्रकट हुए थे, महावदान्य अवतार श्रीमन महाप्रभु के अति निकट परिकर, परिकर नहीं, जिनको महाप्रभु ने अपने गुरु जैसे सम्मान करते थे, श्री सनातन गोस्वामी पाद, उन्होंने अपने मैच्योरिटी स्टेज में, जब उन्होंने प्रगत हो चुके थे भक्ति में, सिद्धांत में, भजन में हर प्रकार से, तो उन्होंने इस प्रकार एक ग्रंथ लिखे। इस ग्रंथ का मटेरियल उनको मिला श्री परमहंस संहिता, श्रीमद्भागवत महापुराण, जिसको भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अमल पुराण करके कहें वो भागवत, और उसके साथ में श्री भक्ति रसामृत सिंधु, ये दोनों ग्रंथ को मंथन करके उसके जो मक्खन निकला, ये इस विषय वस्तु में प्रकट किया जाएगा। इसी विषय वस्तु को प्रकट करके इसी सनातन पाद ने उसका नाम रखे बृहत भागवत अमृतम। भागवत का नाम सब सुने हैं, भागवत का अमृत, उसके नेक्टर निकाले और बड़ा किए, उसको इलाज कर दिए उसको, है ना नहीं? तो प्रसंग का नाम है श्रीमद बृहत भागवत अमृतम। तो श्री सनातन गोस्वामी पाद ने उसको इसी प्रकार प्रेजेंट किए एक नाटकीय भंगी से, जिसमें हमारे वैष्णवी रीति का जो साधन भजन पद्धति है उसका शुरुआत से लेकर के दी बिगिनिंग से लेकर के और अंतिम चरम परम सीमा तक उसमें निर्णय किया गया है, बड़े डिटेल से, बड़े विश्लेषण करके उसको ऐसे उदाहरण के साथ प्रांजल भाव में विश्लेषण किए कि बिल्कुल सुनने में जितने चित्त आकर्षक है, मनहारी है, हृदय को और मन को लुभाता है, तो ऐसे ही आकर्षण भी है सुनने के लिए बोलने के लिए। और विशेष करके उसमें जो उन्होंने प्रस्तावना किए हैं, उसमें श्री जन्मेजय और जैमिनी संवाद में शुरू हुआ है। आप जन्मेजय जी का नाम सुने होंगे, परीक्षित महाराज के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था जन्मेजय, जिन्होंने अपने पिताजी की तक्षक दंशन हुआ अथवा तो उन्होंने इसलिए उनके बदला लेने के लिए गुस्से में सर्प यज्ञ कर डाले थे, सर्प यज्ञ के सर्प वंशक नाश ही कर रहे थे। बड़े ब्रह्मा जी आकर समझाए तो फिर माने नहीं तो सर्प नाश कर दिए थे। तक्षक जा करके इंद्र के शरण में गया, बोले मैं तो ब्रह्मा साप था, मैं आया ये मुझे मार दे, पूरा कुल नाश किया। इंद्र बोले नहीं तू देवताओं के सर्प, देव सर्प इधर आओ। इंद्र ने उनको अपने संरक्षण में अपने प्रोटेक्शन में रखे तक्षक को, तो उन्होंने मंत्र करे थे वो जन्म जब बैठा था सर्पदेव में, बोला तक्षक क्यों नहीं आया बदमाश सर्प, सारे सर्प मर रहे हैं हजारों लाखों, तक्षक नहीं मर रहा है, पक्षी उसका पंख था उड़ता हुआ पक्षी सर्प वो नहीं आया ना। महाराज जी उनको तो इंद्र ने अपने प्रोटेक्शन में रखा है, नहीं छोड़ा इसने। अच्छा इंद्र के इतने साहस, उसको बचा के रखा है हमारे पितृहंता को, क्या किया जाए इंद्र ना। महाराज आप अभी यज्ञ में बैठे क्यों लड़ाई करें, हम काम करते ना, यही से मंत्र करें इंद्र के समय तो आएगा, तक्षक और इंद्र दोनों ही मरेंगे। तो यही से मंत्र पढ़े इंद्र अपने आसन सहित तक्षक सहित आग में घुसने के लिए आने पड़ा। वो इंद्र तो बुलखारतर कांपने लगा, ब्रह्मा जी को बोला है तू सपना हो जाएगा, देवराज मर जाएंगे मार देंगे मुझे भी। तो ब्रह्मा जी दौड़ करके आए, आग बोले बंद करो ये तो सब नाश कर देगा, छोड़ो जो होगा तो समझा समझी करके बंद किए। तो इतने महापराक्रमशाली महाराज जन्मजय थे। तो उन्होंने पिताजी जाने के बाद में वही राजा थे पूरे धरती के। तो उन्होंने एक लंबा घटना जो समय लगा तो कहूंगा क्या हुआ। तो उन्होंने कई प्रसंग के अनुसार महाभारत आदि सुन लिखे तो वैशंपायन से। उसके बाद में उन्होंने जैमिनी मुनि से ये पूछे कि मैं तो उन सुन चुका हूं, कुछ ऐसे बात कहिए जो बिल्कुल मेरे आत्मा को प्रसन्न करना है। बोले आत्मा प्रसिद्धति बात तो भागवत में कहा गया सुखदेव को, समझे ऐसे निचोड़ बात कहिए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बिल्कुल इंसाफ। तो बोले देखो भागवत के निचोड़ भी आपको बोल दूंगा। तो उन्होंने जैमिनी मुनि ने जन्मजय को ये बात शुरू किए, प्रसंग में शुरू किए, बोले हे राजा जन्मजय, ये उस समय की बात है जब राजा परीक्षित को ब्रह्मशाप लग गया था और उनको पता भी चल गया। समीक मुनि ने अपने एक शिष्य को भेजे कि राजा को जाके बता दो इसे मेरे नालायक बेटा उनको साफ दे दिया है। 1 week नोटिस, वीकेंड में उनकी डेथ हो जाएगा सांप सर्प तक्षक दंशन में। तो ये बात सुन करके महाराज परीक्षित तुरंत अपना राजपाट छोड़ करके और उनको जन्मजय को सब कुछ सौंप करके सब कुछ त्याग करके आमरण अनशन के व्रत धारण करके, आमरण अनशन मृत्यु पर्यंत जल तक नहीं लेंगे, अन्न भी नहीं लेंगे, सोएंगे नहीं, उठेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। आमरण मरण पर्यंत अन असन, असन मतलब भोजन, भोजन पानी आदि कुछ नहीं करूंगा, मरना तो है वीकेंड में फिर क्यों खा। तो डिसाइड करके बैठ गए। कहाँ बैठे ना, गंगा जी के तट पर, गंगा तट पर ये व्रत लेकर के बैठे। तो ये बात जब सुने तो हजार संख्या में ऋषि मुनि मंडली महाराज चक्रवर्ती नरेश ये मरने के लिए डिसाइड करके बैठ गए, खाना पीना छोड़ करके, ऐसे किसी हो जाएगा, इतने बड़े राजर्षि थे। तो सब आए उनको समझाने कई प्रकार उनके, लेकिन सबका सामना ही प्रश्न रखे थे। तो अंततः सुखदेव गोस्वामी आए तो उन्होंने उनका समुचित उत्तर देने के लिए भागवत कहे। तो इस भागवत को मुख्य श्रोता के रूप में श्री परीक्षित महाराज सुने बड़े अटेंटिवली। तो उसको जब सुन रहे थे तो इसी सभा में हजारों और अन्य लोग भी बैठे थे, ऋषि मुनि पब्लिक बहुत बैठे थे, मुख्य श्रोता के रूप में परीक्षित महाराज बैठे थे। उस सभा में परीक्षित महाराज के माँ, उनका नाम क्या था, उत्तरा, करेक्ट, उनके पति का नाम क्या है, अच्छा तो आप लोग थोड़े बहुत जानते हैं। तो माता उत्तरा अब तो एज हो चुकी थी उनकी, तो भी आई थी, एक ही बेटा तो था उनका, संतान बीजम कुरुपंडवानाम, कुरुवंश और पंडुवंश दोनों वंश के एकमात्र दायाद वो भी ब्रह्मास्त्र में जला ही दिया था अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा ने गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उनको मार डाला था, बोले एक ही तो नाश हो जाएगा, पंडुवंश और कुरुवंश दोनों ही नाश हो जाएगा, क्योंकि कुरुवंश में तो 100 थे लड़के, लेकिन भीम ने सेंचुरी मारा एक भी नहीं छोड़ा। और पांडव के जो 5 के 5 बेटे थे उसको अश्वत्थामा ने सोते हुए मार दिया। तो अभी तो पांडव बड़े हो चुके थे, अभी उनके एकमात्र दायाद जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा के गर्भ में अभी था। उत्तरा बिल्कुल युवती थी, बिल्कुल यंग थी, अभिमन्यु यंग थे तो उसी अवस्था में गर्भवती थी। तो अश्वत्थामा बदमाश ने वो बोला ये इसी को विनाश कर दो, नाम निशाना उड़ जाएगा पंडुवंश की, तो उनको ही मारना चाह रहा था। तो उत्तरा ने भगवान के शरण में गई, तो भगवान ने उत्तरा के अयन में, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, प्रवेश करके उनको बचाए, हाथ में गदा और चक्र दोनों लेकर गए थे। ये बचाए करके तो प्रथम स्कंद भागवत में लेके, लेकिन परीक्षित महाराज स्वयं द्वादश स्कंद भागवत में कहते हैं, बोलते हैं कि मैंने तो देखा था उनको, वो मेरे चारों तरफ घूम रहे थे, वो पुरुष हाथ में गदा घुमा रहे थे, चक्र भी लिए थे, मेरे चारों तरफ गर्भ के अंदर में उन्हीं को पहली बार देखा। हम लोग तो साधन भजन करके फोटो देखते हैं, लेकिन उन्होंने अभी जन्म ही नहीं हुआ था, माँ के गर्भ में थे तभी भगवान के दर्शन हुआ, और कोई प्रयास नहीं किया, भगवान अंदर घुस के दर्शन दिए, गर्भ के अंदर प्रवेश करके उनको दर्शन नहीं, केवल दर्शन नहीं दिए, उनको परिक्रमा की, भगवान ने परिक्रमा की उनका, उनको रक्षा की। ब्रह्म तेज जल रहे थे, ब्रह्म तेज को हटा करके भगवान ने स्वयं गर्भ में प्रवेश कर रखा किए थे। गर्भ में जिनको पहली बार जिसको दर्शन किए थे, वो जब जन्म हुआ उनको मातृ गर्भ से बाहर आए, छोटा सा शिशु बाहर आते ही जो उनके सामने आता था देखता था उनको, फिर जो आता इसे देखता था, बड़ा हुआ तब भी इसे देखता था सब। नामकरण उससे बोले ये क्या करके इसको देख रहा है, तब पता चला वो मुझे क्यों ऐसे देख रहा है ना, जो वो जो पुरुष मैं जिसको पहले देखा था वो कहा, ये नहीं ना, आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं, जब कृष्ण सामने आए हे ही थे मैं देखा था। तो सभी को परीक्षा कर रहे थे, इसलिए नाम पड़ा उनका परीक्षित, परीक्षित दीप। जो भगवत दर्शन हो गया था जन्म से पहले, कितने बड़े भाग्यवान, अनुमान लगाइए, है ना नहीं, जन्म से पहले जिसको भगवान के दर्शन हो जाए कितने से भाग्यवान होंगे। तो महाराज परीक्षित एकमात्र पुत्र उत्तरा देवी के, उत्तरा जी उनको अपने नयन के पितला मान करके, सब कुछ मान करके उनको बढ़ा के रखी, यही तो एकमात्र कुरुवंश और पंडुवंश के एकमात्र दायाद है, और वो सभी के आशीर्वाद से बड़े पराक्रमी राजा बने, बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बने। आज उनको इस श्रृंगी का साप लग गया कि वीकेंड में उनका डेथ हो जाएगा सर्पदर्शन में। मरना तो ऐसे ही है सबको, लेकिन सर्पदर्शन मरना है कि अच्छा नहीं माना जाता है ना नहीं, तो लेकिन जो भी हो उनको लगा। तो जब उन्होंने आकर के मरने के लिए रेडी बैठे गंगा किनारे, तो ये जो सभा हुआ 1000 लोग, इस सभा में पुत्र वत्सला माता उत्तरा भी आकर बैठी थी। उनके हृदय में धड़कन चल रहा था, हमारा एक ही बेटा है, बेटा सर्पाघात में मर जाएगा, शोक कर रही थी बैठ करके। लेकिन इतने भारी पब्लिक जुटे हैं, उनके सामने ड्रामा नहीं कर सकती, तो इस रुमाल में आंसू पोंछती होगी, पोंछ करके बैठी होंगी। और सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भद्र लोग, हजारों लाखों लोग बैठे थे उनके बीच में, माता जी भी अपने साइड बैठी थी। सुनी, सुनते सुनते देखी एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार, पांच, छह दिन जब हुआ, सातवां दिन होने वाला था, परीक्षित महाराज इतने हसमुख हो गए, पहले तो थोड़ा चिंतित थे, इतने टेंशन फ्री, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, मुख को देखने से पता चल जाएगा कितने प्रसन्न चित्त है। तो जो माँ ने उनके बेटा को आकर देखते थे, उनके सामने सामने बैठते थे, बेटा के मुंह देखते थे जाकर, ऐसी पोजिशन में बैठे थे माता उत्तरा ने कि अपने बेटे को हमेशा देखते थे, बड़ा दुखी होगा उनके सामने कर, लेकिन जब देखे ही तो जिसने डेट नजदीक आता है इतने खुश नजर आता है, इतने खुश नजर आता है, परेशान हो गए। बोले मैं परेशान हूँ, वो तो बड़ा मजे में बिंदास में दिखता है वो। तो सातवां दिन पहले थे, कथा शुरू होने से पहले परीक्षित महाराज बोले, सुखदेव गोस्वामी को बोले, गुरु जी मेरा तो काम हो चुका है, मैं तो जा चुका हूँ, मेरा भय नहीं, चाहे तक्षक आए चाहे कोई आए, आ करके मेरे शरीर के दाह संस्कार करेगा, मैं तो है ही नहीं शरीर में, मैं तो जा चुका हूँ, आएगा तो शरीर को जलाएगा, काहे की लकड़ी खर्चा करेंगे, वो ही आगे जलाए जो करे संस्कार। इसी बात को सुन करके इतने निडर, निर्भय, बिल्कुल खुश हो चुका है, उसको देख करके चांस लेकर के थोड़ा बीच में जब कहा था, माँ आई, अरे बेटा ये मुझे तुझे देख रहा हूँ तो बिल्कुल प्रसन्न चित्त है, इतनी मजे में यार, आज ही डेट है आपका, आज ही तो डेट है ना माता है, मैं तो है ही नहीं, हो क्या करेगा, चाहे कोई आए कुछ भी हो, मैं मेरे गति को प्राप्त कर चुका हूँ। बोले अच्छा, आज का डेट है, सातवां दिन होने वाला है, आप इतने हसमुख, इतने निडर, निश्चिंत हो, और मैं इतने टेंशन में पड़ी हूँ, साहब तुझे कटेगा, मैं चिंता पड़ी, तू बिल्कुल मजा में, कैसे इसे आपका परिवर्तन हुआ, ये हफ्ता के अंदर इतने परिवर्तन कैसे हो गया। बोले माँ आप सुनी नहीं, अभी सुन रहे थे ना, गुरु जी ने जो बता रहे उनको सुन करके, उसके श्रवण के माध्यम से मैं इतने प्रसन्नता, इतने निडर हो गया, मैं बिल्कुल भगवत पद प्राप्त कर चुका हूँ, अब डर क्या है, मेरा तो काम बन चुका है, वो आएगा तो क्या करेगा, चोला को काटेगा, कवर, मैं तो जा चुका, माल तंत्र है ही नहीं, केवल कवर है। ये बात को सुन करके माँ परीक्षित बोले ना, माँ उत्तरा ने बोला, ऐसे मैं भी तो सुन रही थी, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं अब भी रो रही हूं। बोले तुम सुनी नहीं ना, मुझे सुन रही थी बेटा, क्या करूं, तेरे चिंता ने मुझे अटेंशन मैंने इनअटेंटिव रख रही थी, तो इसलिए मैंने ढंग से सुन नहीं पाई। वो बोले तो बाकी साहब तो कभी कोई सुन रहा था, लेकिन अब हमेशा तेरे मुख देख रहा था और देख रहे थे, तो इसलिए थोड़ा ढंग से सुन नहीं पाई, तू ऐसा कर, इतनी बढ़िया बात, तो मुझे भी थोड़ा बता दे यार, मैं भी बड़ी चिंतित हूँ, मैं भी चिंता, ना कोई भी सुनेगा चिंता, हाँ हो जाएगा, कोई भी किसी भी व्यक्ति उसको सुने तो वो भी टेंशन फ्री हो जाएगा, तो मुझे थोड़ा बता दो क्या है ना। माता जी टाइम कहाँ है, अब तो सेवेंथ डे, अब तो जाना है ना। अरे बेटा कृपा करके थोड़ा तो संक्षिप्त में, शॉर्टकट में, बहुत शॉर्टकट में जो थोड़ा बता दो, हाँ तो फिर तू चला जाएगा तो मुझे कौन बताएगा। तो माता जी के इस प्रकार अनुरोध को सुन करके मातृ प्रेमी राजर्षि परीक्षित माँ को बैठा, बोले माँ बैठिए और मैं बताता हूँ। तो बताना शुरू किए, क्या बताना शुरू किए, बोले माँ देखो तो पूरा भागवत जो गुरु जी से सुना तो नहीं बता सकता हूँ, तो लंबा साधन का बड़ा डिटेल कथा है, उनका जो समरी एक बार सारम सारम समुद्रितम, उनका सार सार को ग्रहण करके तो शॉर्टकट में जो मुझे समझ में आया, मैं जो समझा, जिसको समझ करके मैंने इस स्थिति को प्राप्त किया, इस बात से बताता हूँ, और जिसको सुन करके तू भी इस निर्भय पद को प्राप्त कर जाएगा, अभय पद को प्राप्त कर जाएगा। तो माँ ने बढ़ गई, बोले बेटा बता जल्दी जल्दी, हाँ कम समय है, समय से पहले बता देना। तो इसने कम समय में श्री राजर्षि परीक्षित अपने माता उत्तरा देवी को ये जो भागवत सुनने के बाद जो उनको अंडरस्टैंडिंग मिला, वो फीडबैक सेरेमनी दे रहे हैं, फीडबैक सेशन, और अपने मतामत दे रहे हैं कि क्या समझे उन्हें भागवत सुन करके, उनका अंडरस्टैंडिंग क्या है, और आप जो सुनेंगे वो क्या बताए, वो भागवत में सुखदेव गोस्वामी एक भी उसका वर्णन नहीं किया, बिल्कुल अलग, उसमें टोटली विषय ही अलग, क्योंकि वो जो समझे वही बता रहे हैं, जो बोले थे इसको नहीं बता रहे। हम लोग को अगर बताया जाएगा हम तो वही वार्ड को कॉपी करके डिटो करके थोड़ा कॉपी पेस्ट करके लगा देंगे, हम लोग का ही प्रैक्टिस है ना, किसी का सारांश करो तो इसी से लेंगे, बीच से किनारे इधर उधर थोड़ा ले करके कॉपी पेस्ट करके बोल दें हो जाएगा। लेकिन ये जो समझे और जो उनके अंडरस्टैंडिंग है, बड़े विचित्र बात है। इस बात को उन्होंने कहने जा रहे हैं तो परीक्षित और उत्तरा संवाद, और इसी संवाद को जैमिनी और जन्म जैमिनी करते हैं, और इस संवाद को आज आपके सामने इस अधम को प्रस्तुत करने के लिए प्रयास करना चाह रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले जब उन्होंने शुरू किए, माँ ने जब पूछी तो शुरू किए, तब परीक्षित महाराज ने विषय शुरू करते हैं कि एक समय के बात है, मासानाम मार्गशीर्षोहं, भगवान कहते हैं मास मार्गशीर्ष मास में हूँ, लेकिन हम जानते हैं कि जितने स्नान चान सब करते हैं, मेला लगता है माघ मास में होता है, जानते ना, इलाहाबाद में लगता ना माघ मेला, माघ मेला लगता है प्रयाग में, जनवरी माघ मेला। अभी तो ठंडी पड़ी नहीं, कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ जनवरी में जो कड़क ठंडी है उसी समय गंगा जी के पानी में नहाना हो, तब जो तो गीजर ऐसी था नहीं, इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, और फिर वहाँ पे तो कहते हैं कि एक समय की बात है, माघ मास था, माघ मास में और तीर्थराज प्रयाग में जहाँ गंगा और यमुना के संगम है, गंगा यमुना सरस्वती, उस प्रयाग धाम में अनेक अनेक ऋषि मुनि पंडित ब्राह्मण इकट्ठा हुए, क्योंकि माघ मास सब कई लोग गए होंगे, अपने कल्पवास होता है वहाँ, एक महीना वहीं रहते हैं, इसको कल्पवास कहते हैं। अगर एक महीना रह जाएंगे ना, एक महीना वहाँ रहना मतलब एक कल्प तक तप करना माना जाएगा। एक कल्प जानते कितना होता है, ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं, 1000 चतुर्युग, एक कलिजुग पूरा 432,000 साल, प्लस उसके ऊपर द्वापर युग 864,000 साल, प्लस कलिजुग का 3 गुना त्रेतायुग उसमें ऐड करो, कलिजुग का 4 गुना सत्ययुग उसके ऐड करो, वो चारों को मिला दो लगभग 43,20,000 ईयर्स, 43,20,000 साल एक चतुर्युग होता है, तो इतने साल इंटू 1000, 1000 चतुर्युग, ये 12 घंटा दिन का, फिर 1000 चतुर्युग रात का, तो दोनों मिला करके 2000 चतुर्युग बीत जाए तो ब्रह्मा जी का 24 घंटा बीते, तो इसको एक कल्प कहते हैं, ब्रह्मा जी के कल्प। तो अगर आप इस गंगा जमुना के संगम स्थल में राइट देयर, जहां उनका संगम, यहां पर जो भूमि है, इस भूमि में माघ महीना में ये संक्रांति टू संक्रांति, नहीं तो पूर्णिमा से पूर्णिमा, नहीं तो एकादशी से एकादशी, जिनको जैसे गिनती में है, आप एक महीना यहाँ रुक करके डेली स्नान करेंगे, यहीं रहेंगे, भजन करेंगे, जो भी करेंगे वहीं खाएंगे, वहीं सोएंगे, आनेंगे नहीं, यहीं रहेंगे, तो उसको माना जाएगा कि आप एक कल्प तप किए 2000 चतुर्युग की तपस्या करने के समान हो जाएगा केवल एक महीना, इतने अब है ये कड़क ठंडी माघ महीना होता है, इसी बाहर निकलने में पूरा अपाद मस्तक उलेन वस्त्र लगाते हैं, और वहाँ पर ऐसे ही दोनों तरफ गंगा जमुना की हवा बिल्कुल खुली मैदान, तीर्थराज में यहाँ रहना कल्पवास, लेकिन लोग करते हैं आजकल में, बहुत लोग करते हैं। तो इसी कल्प प्रयाग क्षेत्र में, वो तीर्थ क्षेत्र में तो हजारों संख्या में भीड़ लगा था, मतलब कुंभ लगा था, कभी कभी हर साल माघ मेला होता है, लेकिन 12 साल में एक बार तो करोड़ों की संख्या में आते, पूरे भारतवर्ष के जितने साधु संत सारे इकट्ठा हो जाते हैं। आप कब गए कुंभ में? नहीं, अरे कि जी कोई कुंभ में नहीं गए, बता दे, ये तो है, ये क्या है,
लेकिन ये तो बाकी तो अरे अभी आप बताएंगे तो इसकी स्थिति जाते
हैं। पूरे भारतवर्ष के जितने समुच्चे संत है और एक साथ देखना चाहे एक बार कुंभ में जाकर देखिए, विचित्र विचित्र संत है, हाँ अद्भुत है, किसी का सारे जटा जूट, किसी का बिल्कुल कुछ नहीं, किसी के विभूति लगाए, किसी के क्या क्या अद्भुत अद्भुत संत सम्मेलन होता है, सारे जुटते हैं। तो इसे कुंभ क्षेत्र में तो सारे लोग जाते हैं, करोड़ों संख्या में लोग जाते हैं इस अमृत योग में। तो उसी समय था, मतलब कुंभ का समय था, महाकुंभ पड़ा था और माघ का महीना था और क्षेत्र था तीर्थ शिरोमणि तीर्थराज प्रयाग, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती की संगम स्थली। यहाँ पर कई मुनि ऋषि तो आए थे, तो ऐसे एक मुनि मंडली जो बड़े पहुँचे, जिसमें नारद जी भी थे, नारद और उनके उनके मित्र मंडली, सब बड़े बड़े अच्छे ग्रेड के संत मंडली, मुनि मंडली वहाँ स्नान करके, सुबह सुबह संगम में स्नान करके आकर बैठ करके अपने चिता चेतन लगा करके अब आपस में चर्चा कर रहे थे। क्या चर्चा चल रहा था? चर्चा का विषय था कि सचमुच हम लोग सब साधन भजन किस लिए कर रहे हैं? भगवान की कृपा पाने के लिए, है ना? नहीं, यही लगे है ना, भगवत कृपा प्राप्त हो जाए। बोले हम लोग भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, जो साधन भजन आदि कर रहे हैं, तो इस सचमुच हमको कृपा क्या मिला या नहीं मिला? तो कितनी मिला? पूरा मिला, आधा, या उससे कम, क्या कैसे? अभी तक किसी को कृपा प्राप्त हुआ या नहीं जितने कर रहे हैं? इसी विषय में चर्चा कर रहे थे। कौन? नारद आदि महर्षि, कोई छोटे मोटे नहीं है, देवर्षि नारद जी और उनके साथ साथ बड़े बड़े सब इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। बैठ के चर्चा कर रहे थे, एक दूसरे को बोले थे, भाई नारद जी आप तो मानना पड़ेगा, आप तो वास्तविक भगवान के कृपा पात्र है, भगवान के हमेशा काम करते हैं, हमेशा भगवान नाम लेते हैं, इसे करते हैं। और दूसरे अंगिरा ऋषि बोलते नहीं नहीं आप ऐसे, एक दूसरे को कृपा के भाजन मानते, बोले नहीं आपको कृपा पात्र है, बोलते नहीं आप है, आप ऐसे कर। ऐसे बातचीत करते करते उनका नजर पड़ा इस कुंभ क्षेत्र में, बीच कुंभ क्षेत्र में देखे कि एक ब्राह्मण आया, बड़ा जनेऊ डाला था, त्रिपाठी या चतुर्पाठी, चतुर्वेदी या चोबे की त्रिवेदी कोई होगा, कोई ब्राह्मण आया और उनके सपरिवार आया। तभी जमाने में गाड़ी फाड़ी तो नहीं था, जो गाड़ी होता था बैलगाड़ी होता था, बैलगाड़ी और ऊंट खच्चर हाथी घोड़े यही सब गाड़ी होते थे, जीवंत व्हीकल होता था जिसमें कोई पेट्रोल डीजल का जरूरत नहीं पड़ता था, है ना? तो वो जो ब्राह्मण आया जिस गांव से आया, इसी गांव का वो मुखिया था और बड़े संपत्तिवान था, सम्भ्रांतशाली था, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उनके पूरा परिवार आया उनके साथ में, कोई घोड़े में, हाथी में, बैलगाड़ी में बैठ करके आए, बड़े सम्भ्रांत परिवार थे पूरे, सभी ने उनके परिवार में पत्नी और उनके जो परिवार वाले सब अलंकार पहने हुए थे, ब्राह्मण भी इतने सुंदर गोल्डन बड़ा धोती पहना हुआ था, बहुत सुंदर आभूषण, सुंदर वेशभूषा था, और सब वाहन में चढ़ करके आए। और केवल वाहन में चढ़कर नहीं आए, उनके साथ साथ देखे उनके पीछे, आजकल तो ट्रक लोड माल लेकर जाते हैं, ट्रक तभी था नहीं, तो कई खच्चर में, ऊंट में, हाथी में और कई बैलगाड़ी में माल, इतने माल लेकर आए थे, सामग्री खूब लेकर आए थे, क्योंकि जो जानते हैं कुंभ में जाते हैं दो दान देने के लिए, स्नान और दान, वही दो काम होता है इधर, बाकी हम लोग तो जाते हैं भोजन करने के लिए, लेकिन बाकी लोग स्नान दान करने के लिए जाते हैं। तो उन्होंने ये प्रतिष्ठित व्यक्ति वहाँ आपने पूजा करने के लिए दान देने के लिए लेकर आया था सामान, बहुत सारा सामग्री लेकर आया था, और तभी जमाने में तो डुप्लीकेट था नहीं, सब असली माल था, देसी घी और ऐसे बासमती चावल और क्या सब, बहुत सारे सामग्री पूरा बैलगाड़ी कई लोड करके लेकर आया, और सब देख रहे हैं। ब्राह्मण आया और सपरिवार जा करके स्नान किए संगम, सभी ने सारे सामान इधर रखे, रख करके पहले जाकर स्नान किए, स्नान करके आ करके वो जागा को उपस्कार के उपस्कार मतलब झाड़ू पोछा करके साफ की क्लीन किए, जागा को क्लीन किए, सभी लगे हुए थे ब्राह्मण, सब गाड़ी का था ऐसे करो ऐसे करो, उनके अध्यक्षता में सारे परिवार लोग जागा को साफ किए बिल्कुल समुचित प्रकार से, भली भांति साफ करने के बाद बीच में ब्राह्मण ने कुछ पंडितों को बुलाकर लाया था, पंडितों को लगा कर बताया कि बड़ी सुंदर यज्ञ मंडप बनाया गया, बड़ी सुंदर वेदी एक वेदी बनाया, उसके सामने होम यज्ञ करने के लिए मंडप बनाया, अल्टर बनाया, बड़े सुंदर बनाया। वो अल्टर बना करके यज्ञ मन अल्टर के ऊपर वो लेकर के आया था अपने घर से, पेटी निकाला, सोने में एक क्या बोलते हैं अल्टर छोटे से सोने का, सोने का सिंहासन, सोने में हीरे चांदी जड़ा हुआ था, ऐसे सिंहासन निकाला और उसको लगाया और पूरे सभा में चक 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 दिखाई पड़ रहा था ऐसी चमक। तो उसी को लगाया अल्टर, गोबर में लीपा, वेदी बना करके लीप करके और उसके अंदर रंगोली डालते ना, रंगोली डाले हम माता जी ने उसे रंगोली डाले और कभी फूल और पत्ते से सजाए, फल से सजाए, सजा करके उससे जो सोने चांदी के वाला जो सिंहासन लगाया। तो फिर आपने गले से एक बटुआ था उसको निकाल करके एक शालग्राम निकाला, बिल्कुल सर्वलक्षण संपन्न नारायण शिला एक शालग्राम निकाला, निकाल करके उसमें अधिष्ठित कराया, पधरवाया और तुलसी दल तो बहुत सारे लेकर आया था, मंजरी सहित तुलसी दल और गंगा का जल तो है ही है, गंगा जल तुलसी दल लेकर के सारे ब्राह्मण बैठ करके पुरुष सुक्त पाठ किए, कोई कोई मंत्र पाठ किए, कोई गीता आदि पाठ किए और वो भगवान कृष्ण के गोपाल मंत्र के बीज मंत्र के द्वारा सचंदन चंदन घिस करके तुलसी मंजरी उनको अर्पण कर रहा था। अष्टोत्तर शत सचंदन तुलसी मंजरी अर्पण किया, सब देख रहे थे वाह क्या विधिवत काम कर रहा है। पूजा किया, पूजा करवा करके उधर क्या किया, पूजा में संग बैठा, सारे परिवार को लगा दिया, बाकी जो उनके भाई बंधु कुटुंब बैठा, बोले पुजारी ब्राह्मण को बुलाओ भोजन तैयार करो। तो एक समयाना ऐसे डाल करके वहाँ भोजन के लिए प्रस्तुति किचन शुरू हो गया। और जो माल तो लेकर के आया था, बर्तन भी लेकर आया था, बर्तन मेटालिक बर्तन, ये अल्मोनियम बर्तन नहीं था, बिल्कुल कांस्य पात्र, वो ये पात्र सब लेकर आया था। तो पात्र में, बड़े बड़े पात्र में सुमिष्ट भोजन बना, एक से एक हलवा कचौड़ी खीर जो बड़े एक एक से एक ऐसे ऐसे आइटम बनाया, बहुत सारे आइटम, कई आइटम बनाया, गरम गरम बना करके सब देसी घी में, और उस पास में बैठ कर देख रहे थे, नारद बैठ के देख रहे थे क्या कर, बना करके वो पूजा किया, पूजा करके फिर हवन हुआ, यज्ञ हुआ, यज्ञ हवन होने के बाद में तब प्रसाद भोग लगने के लिए आया। जो एक चांदी के थाली मंगा करके इतने आइटम उसमें रखा, गरम गरम बांह फूट रहा था उसमें, पूरी बिल्कुल फूला हुआ था, उसमें बांह फूट रहा था और दाल और बाकी जो सब्जी खीर ये बिल्कुल ताजा गरम अभी उठा करके तुलसी पत्ता डाल करके उनको ऑफरिंग किया, बिल्कुल सविधि वो सब देख रहे थे, बोले कोई कमी नहीं छोड़ा, इतने सुंदर भाव से ऑफरिंग किया। ऑफरिंग करके और आसपास तो ब्राह्मण जितने तो थे ही थे, उनको जा करके बाकी कुंभ क्षेत्र में जितने साधु सन्यासी ब्राह्मण थे सबको पति पत्नी जा करके पैर पकड़ कर करके इनवाइट किए कि आइए प्रसाद पाइए, प्रसाद पाइए, कृपा करके आइए। और जब वो इनवाइट कर रहे थे, अपने गामछा को गले में डाल करके और उनके पत्नी भी अपने साड़ी के पणत को इसमें गले में डाल करके हाथ जोड़ के चरण स्पर्श कर करके मथे में अपने चरण में मथा लगा करके उनको हाथ जोड़ के उनको निमंत्रण करते थे, निहुरा करके बुला बुला कर ला के बैठाए। प्रथम ब्राह्मण पंक्ति बैठा तब तो वे कई पंक्ति भोजन कराए और ऐसे भोजन भर भर के कराते थे, ब्राह्मण बिल्कुल तृप्त होते थे, मन भर के खिलाते थे सब गर्म गर्म आइटम भोजन कराए। केवल भोजन नहीं कराए, देखते थे सब भोजन के, भोजन के बाद में सभी को उपयुक्त दक्षिणा और वस्त्र वो भी दिए, माल्य चंदन तो दिए ही, भोजन के बाद सबको चंदन पहनाए, माला पहनाए, उसके साथ साथ दक्षिणा और वस्त्र सबको दिए और सब प्रसन्न होकर जा रहे थे। सब ब्राह्मण विदा होने के बाद में और दूसरे लोगों को बुलाए, सभी प्रकार लोगों को, सभी चतुर्वर्ग के लोग, चार प्रकार के लोगों को खिलाने, बच्चे स्त्रियां सबको खिलाने के बाद में यहां तक कि जो यहाँ पशु पक्षी थे, कुत्ते तक बोले तो जो भी पशु पक्षी थे सबको बुला करके, अंततः तो खाने से पहले कुछ चिड़िया भी कहीं है उनको भी इधर करके सब फेंका, चिट्टी तक भी दिया सबको, सभी को पशु पक्षी कीट पतंग तक प्रसाद खिलाने के बाद अंत में सारे विदाई करने के बाद प्रणाम करके ये करके तब पति पत्नी बैठ करके भोजन करने लगे, है ना। भोजन करके तो फिर उनको कुछ करके सब जो था सामग्री वो खाली कर दी, सब दान टान सब करके गोबर में लिप करके उनको विसर्जन करके शालग्राम फिर बांध कर करके जब उठ रहे थे जाने के लिए, तो तभी तक तो ऋषिगण देख रहे, वाह क्या विधि पूर्वक पूजा, जो हम सुने थे कभी किए नहीं, कैसा क्या कितने सुन, और कोई मन में अभिमान नहीं, कोई अहंकार नहीं, सबको पैर पकड़ पड़े इस प्रकार। तो उसी को देख करते ऋषि गण तो बैठे थे, बोले हम क्या प्रश्न बातचीत कर, देखो भगवान की कृपा का तो यही पात्र है, देखा मानना तो पड़ेगा, देखे हम सभी देखे, आप दौड़ कर तो सब देख। नारद जी तो बोले भाई अब जाना पड़ेगा, जो वही कृपा पात्र है, इतने सुंदर पूजा किया सुक्त पाठ। तो नारद जी सबसे पहले उठकर चले गए, जाकर बोले हे ब्राह्मण देवता, हाथ जोड़ के बोले सचमुच मैं सुना था भगवान के कृपा के बारे में, लेकिन आज तो देखा, आज तो मैंने देखा कि सचमुच आप भगवान के कृपा पात्र हैं, कितने सुंदर आपके भाव है, कैसे इस माघ में महीना में इस प्रातःकालीन स्नान करके इस प्रकार विधि पूर्वक पूजा करके ब्राह्मण देवता सबको प्रसन्न करके सभी जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंग पर्यंत सबको भली भांति भोजन स्नान दान दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न किए, ऐसे पुष्कर ऐसे किए, नीति निपुण होकर के मंत्र जंत्र के द्वारा, आहा कितने सौभाग्यशाली कितने अच्छे। जाकर जब उनको नारद जी ने प्रशंसा करने लगे, तब उस ब्राह्मण देवता ने बोले हे नारद जी, आप मुझे क्यों बोलते हैं कृपा पात्र, मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैं क्या किया इतने को देख करके मुझे कृपा पात्र मानते हैं, ये तो कुछ भी नहीं। बोले अच्छा, हम तो देख इतने बढ़िया किया, मैं तो किया लेकिन क्या किया, मैं तो एक ही दिन किया माघ महीने में आकर के, मेरे जितने संपत्ति था इतने कर पाया और तो कर नहीं पाऊंगा, इस समय पूरी साल भर के कमाई दमाई संचित लगा करके, ये साल होने 12 साल के इकट्ठा किया था, कुंभ आएगा तो कुंभ में आज एक दिन में कर पाया, लेकिन इतने में क्या होगा, आपको पता नहीं दक्षिण देश में एक राजा है वो डेली ऐसा करता है, वो डेली हमसे ज्यादा ऐसे ही इतने ब्राह्मण भोजन कराता है, इतने प्रसन्न कराता है, इतने पूजा है, उनका तो मंदिर बना के रखा है, पूरा राज्य ही उनके डिवोटी है, वो तो नीति बना के रखा कि सबको हरे कृष्ण जपना ही पड़ेगा, नहीं तो राज्य से निकाल दूंगा, ऐसे आइन बना के रखा है राज्य में, और ऐसे राजा के प्रसन्न किए नारद जी ने। जब किए तो नारद जी उनके एड्रेस लिए, एड्रेस फोन नंबर लेकर के इमीडिएट वहीं से डायरेक्ट फ्लाइट लिए, इलाहाबाद से डायरेक्ट कर्नाटक गए। अब जा करके जब वहाँ उतरे, वहाँ पहुँच करके देख रहे हैं कि ये तो मानना पड़ेगा, बिल्कुल सख्यात मंदिर है, पूरे राज्य में जहाँ जाते हैं सभी लोग कंठी धारण किए, तिलक धारण किए, शिखा धारण किए, सब भगवत नाम जप कर रहे हैं, सब नियम पालन कर रहे हैं, सब पवित्र है, शुचिव्रता है, सबके घर के सामने तुलसी है, कोई पाप के चिन्ह नहीं दिखाई पड़ रहे पूरे राज्य में, सब जगह में सफाई। नारद जी इतने खुश हो गए, वाह सही में, मैं एक परिवार उठे थे पूरा राज्य ही है। और जब जा करके राजधानी में पहुंचे राजभवन में, तो वहां तो देखे कि भाई महाराज स्वयं सपरिवार इतने सम्रांतशाली पराक्रमी बड़े राजा होते हुए भी एक बार आपने आपको सबसे छोटे नीच दीनहीन मान करके साधारण जाकर झाड़ू लगा रहे मंदिर के साथ, झाड़ूदार के सेवा कर रहे हैं, कोई पोछा लगा रहे हैं, किसी को प्रसाद परिवेशन करने जा रहे हैं, किसी को जल दान कर रहे हैं, ऐसे छोटी सी छोटी सेवा निसंकोच होकर करते जा रहे हैं, और सारे बाकी लोग जो हैं सभी सेवा में लगे हुए हैं, किसी का मन में कोई अभिमान नहीं है कि मैं इसे कर रहा हूं, मैं इतनी सेवा कर रहा हूं, कोई अभिमान नहीं, सब अभिमान शून्य होकर के सारे आपने तथाकथित मानव छोड़कर सारे लगे हुए हैं सेवा में, मैं किसे करूं और करना चाहिए, मैं तो कुछ भी नहीं किया और करना चाहिए, ऐसे अभिमान छोड़कर सब लगे हुए हैं संत सेवा में, भगवत सेवा में। और ब्राह्मणगण पंडितगण बड़े समुचित प्रकार से मंत्र आदि पाठ कर रहे हैं, और नारायण कवच पाठ हो रहा है, नारायण की विविध प्रकार से सेवा हो रहा है, विविध प्रकार के व्यंजन, बोले पूरे राज्य में सभी प्रसाद भोजी है, सभी प्रसाद भक्षण कर रहे हैं, किसी ने बिना फड़ फूड खाते ही नहीं, सब प्रसाद खाते। और महाराज के घर में तो जितने गेस्ट आते हैं उनको ऐसा उन्होंने ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो सुने थे कि अतिथि देव भव, सचमुच देवताओं की तरह उनको इससे व्यवहार करते हैं, उनके साथ वार्तालाप करते हैं जिसे देवताओं के साथ किया जाए। इतने मान सम्मान दे करके और देवताओं के जैसा उनसे व्यवहार करके, उनको मंदिर में ला करके, उनके पद धूत करना, उनके सब करना, सब प्रकार करके उनको बैठा करके, इस प्रकार भोजन और उनके जो सब करते हैं उसको देख करके नाराज जी बोले, बाप रे बाप, कितने संत सभी है, कितने भगवत प्रेमी है, वो अहरनिशी नाम जप भी कर रहे हैं और मन में कोई अहंकार नहीं है पूरी, ये सब देख करके तो उनको लगा कि सही ब्राह्मण ने सही बताया था, मैंने अभी तक ही नहीं देखा था। राजा होकर के सब प्रकार के भोग सामग्री उनके उपलब्ध था, उनके पास में सब कुछ होते हुए सब कुछ त्याग करके, हम लोग के पास तो है ही नहीं भोग सामग्री, लेकिन हम चाहते हैं कि ये मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, अगर हो गया तो अरे ऐसा करने लगे सब हो जाए, लेकिन उनके पास सब था, लभ्य वस्तु सभी था उनके पास, स्वयं राजा था, लेकिन ये सब कुछ भोग को छोड़ करके, इतनी बड़ी तपस्वी त्यागी सब छोड़कर साधारण छोटे से छोटे तुच्छ क्रिया करने के लिए वो आगे आता है और सबको लेकर करता है। और काम करते हुए जब फिर आरती शुरू हुआ, सब देखे राजा तो सपरिवार साथ में, पत्नी और अपने बेटे बेटी को साथ में ले करके, नारद जी तंग हुए, अरे उछल उछल कर कूदते हुए नाच कर कीर्तन करने लगा, उछल कर कीर्तन करने लगा। नारद जी तो देखने लगे जसमा भाई को, मैं ये भी नहीं देखा था, ऐसे स्वयं प्रेम से नाम कीर्तन कर रहा है, उछल कूद रहा है, धन्य है राजा सपरिवार सब उनके नाच रहे। हम में तो कोई ज्यादा से ज्यादा प्रभु जी भक्त बन गए, भरीजन प्रभु ज्यादा प्रेशर डाले तो बन गए, बेटा बेटी तो बनेंगे नहीं, अगर बेटा बन गया तो वो नहीं बनेंगे, है ना, नहीं, लेकिन उनके कोई छूट नहीं था, पूरे राज्य शब्द डिवोटी थे और उनके परिवार तो राज परिवार तो आदर्श था, संपूर्ण परिवार में सारे एक से एक ऐसी भक्ति कर रहे थे, ऐसी भक्ति कर रहे थे। नारद जी देख करके बोले तो इस प्रकार के व्यवहार, ऐसे नाम जप नाम कीर्तन, इस प्रकार के सेवा भाव, इस प्रकार के भव्य से, उसको देख कर नारद जी प्रसन्न हो गए। आप देख देख कर उनसे रहा ना गया, आप चले गए पास में, जाकर हाथ जोड़ के बोले प्रणाम स्वीकार किए, राजन हे महाराज, आपकी तो सचमुच भगवत कृपा के एकमात्र पात्र आप ही है, आप ही भगवत कृपा पात्र है, अब कृपा करके मुझे भी अपने अपने संग दीजिए, मुझे भी कृपा कीजिए, अद्भुत है आपने, आपके क्रिया कला व्यवहार जो सब सिद्धि भजन साधन, ओ हो क्या कहूं, ऐसे ऐसी प्रशंसा करने लगे। राजा उठ कर देखने लगे, कौन है, कौन आप, कौन है, हमें देवर्षि, आप देवर्षि नारद है, आप मुझे आकर ऐसे बोल रहे हैं, हाँ मैं क्या कहूं, बोले क्या ना, सुनो तो सही, आप बोली भाई सुनो तो सही, मेरे से तो सुन लो, मैं कृपा पात्र हूँ, मेरे से बोलते ही चले जा रहे हैं, सुनो तो सही ना, क्या ना, हे नारद जी मैं कुछ भी नहीं, आप क्यों झुटमुट मुझे इतनी प्रशंसा करो, मैं अगर कृपा पात्र भगवान की कृपा मेरे ऊपर होता तो मैं ऐसे डरता, मेरे पास क्या है, छोटा सा राज्य है, भगवान ने जो दिया इसी को लेकर मैं कर रहा हूँ चला रहा हूँ, और वो भी मुझे डर है कोई आकर युद्ध ना कर दे, कब तक रहूं क्या करूं, कई टेंशन में पड़ करके जैसे जैसे कर करके चला रहा हूं, भगवान की कृपा से हो जा रहा है, नहीं तो मेरे से तो हो रहा, मैं डाउट नहीं, इस प्रकार से इतने चिंता इतने इस साथ में कर रहा हूं, आप मुझे बोलते हैं मेरा धन है कितना, मेरा आयु कितना है, मेरा क्या सप्त सीमित है, इस भौतिक संसार में सब कुछ की तो सीमा है, अब उम्र हो गया, पहले जैसे करता था कर भी नहीं पा रहा, अभी ऐसे सेवा नाच नृत्य कीर्तन अभी हो भी नहीं रहा है, और होगा तो कितना दिन तक होगा पता ही नहीं, सब मिट जा रहा, कितने बढ़िया उत्कर्ष को प्राप्त करो, अपकर्ष भी होता घट जा रहा ना, समय समय के अनुसार समिटते चला जा रहा है ना, मेरे इतने पशु परिवार में धन है ना, जन है ना, बल है, कुछ भी नहीं है, और जो थोड़ा बहुत था वो भी घटते चले जा रहा है, ये भगवत कृपा से चल ही रहा है, ये बड़ी बात है, हाँ मैं कैसे कर पाऊंगा सवा जैसे मैं रिचार्ज कर पाऊंगा, तो ऐसे ऐसे आपने सारे पॉइंट बता करके बोला कि आप अगर चाहते हैं तो मेरे तो सब प्रकार से लिमिटेड हूँ, बस भी समय भी लिमिटेड है, शक्ति भी लिमिटेड है, धन भी लिमिटेड है, सब कुछ लिमिटेड है, इसके साथ मैं कैसे करूँ, आप इसी को लेकर भगवान की कृपा मानते हो? भगवान साक्षात अनंत है, उनकी कृपा जब हो जाए तब फिर टेंशन अनंत काल तक अनंत प्रकार से सेवा किया जाए, लेकिन हमारे शक्ति सामर्थ्य कुछ नहीं, सब अंत हो रहा है। अच्छा, अगर आप नारद जी सचमुच भगवत कृपा पात्र ढूंढना देखना चाहते हैं ना, तो मेरे मत में तो मैं आपको एड्रेस देता हूँ, आप जाकर देखिए। बोले कहाँ जाऊँ? बोले इस धरती लोक में तो ये मृत्यु लोक है, इस लोक का नाम क्या है? मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में तो सब आते हैं मरने के लिए, है ना? नहीं, यहाँ केवल एक ही काम होता है, मरना। जितने सामग्री रखा गया सब मरवाने के लिए रखा गया है, हम आते मरने के लिए आते हैं, वहाँ फिर जीने का सवाल ही कहाँ होता है। इस मृत्यु लोक में जीना और सुखी होना ये दोनों तो काम संभव ही नहीं है, क्योंकि दुखालय में दुख ही देगा और मरवाएगा, यहाँ तो सुखी हो नहीं सकता, जी भी नहीं सकता। तो यहाँ आप कैसे कहते हैं? तो इसलिए इस भौतिक संसार में तो मृत्यु लोक में दुखालय में तो आप मिलेगा नहीं आपको। आप सचमुच कृपा जान पाना चाहते हैं ये तो जेल है, आप जाइए, मैं बता रहा हूँ, देवलोक स्वर्गलोक में जाइए, देवलोक में जाइए। अरे यहाँ ऐसे ही पब्लिकली अमृत पी है सब लोग, पब्लिक मरने का तो चिंता है, अमृत भी है। यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, टॉयलेट बाथरूम नहीं, कुछ नहीं, ये सब है ही नहीं, कभी बीमारी बीमारी है ही नहीं, अमृत पी करके बिल्कुल चंग बिल्कुल ठीक। और क्या बताऊँ, हम लोग तो एक विग्रह प्रतिष्ठा करके लगाए, यहाँ तो साक्षात देवराज इंद्र ने, अब क्या बताऊँ आपको, आप सब जानते हैं, इंद्र के छोटे भाई बन करके भगवान आए, आपने नाम भी उप इंद्र रखे, असिस्टेंट इंद्र, है ना? नहीं, स्वयं भगवान ने इंद्र के छोटे भाई बन करके आए, वो आ करके उनकी कृपा किए, उनको अपने राज्य दिए और उनसे कृपा करके सेवा भी स्वीकार कर रहे हैं। इंद्र स्वयं साक्षात अपने भाई भगवान को साक्षात सेवा कर रहे हैं अपने देवलोक में, और दिव्य दिव्य पदार्थ में किस प्रकार उनका सेवा कर रहे हैं। उनका तो अमर लोक है, अमर समय तक किस भव्य रूप में पूजा होता है, अगर देखना जाना तो जाकर देखो, ऐसे देवराज इंद्र के ऊपर कैसी भगवान की कृपा है, उनके भाई बन कैसे उनके सेवा स्वीकार कर रहे हैं और कैसे उनके भो कैसे उनके सब देखना चाहते नाराज। मेरे ये तुझसे क्या है, सब लिमिटेड है। इसको सुन करके जान करके नारद जी उनसे जो सुने सारे डिटेल इंद्र के बारे में और कैसे भगवान ने कृपा किए इंद्र के ऊपर, इसको सुन करके नारद जी ने नोट के बोले रियली यस, बोले मैं बता मुझे आइडिया, बोले मुझे तो पता ही है, मैं हमेशा ट्रैवलिंग करता रहता हूँ, नारद जी को कुछ बुकिंग करना नहीं पड़ता, रिजर्वेशन करना नहीं पड़ता, उनका अपना गाड़ी है, जहाँ फीड किए यहाँ जाना है पहुँचे, बिना पेट्रोल बिना ट्रैफिक बिना जाम कुछ नहीं चलता, हम वो पहुँच जाएंगे जिस एड्रेस में पर्टिकुलर वहीं पहुँच जाएंगे, ऐसे उनके ट्रैवलिंग। तो एड्रेस नोट के बोले पहुँच जाऊँगा, मैंने देखा तो सारे विशद वर्णन देवलोक का और देवराज इंद्र का और उपेंद्र का और उनके पूजा का सेवा का सारे वर्णन सुन करके नारद जी तो उतावली हो गए, बोले यार यार जल्दी जाना चाहिए, टाइम क्यों खराब कर रहा हूँ इधर मैंने, है ना? नहीं, इस प्रकार नारद जी जाने के लिए जब विचार करके वहाँ से विदा लेकर जा रहे हैं, तो हम भी सोचते हैं हम भी विदा लें। अभी आप लोग सब इधर उधर देख रहे हैं, 9 बजने वाला है, कई ऑफिस में जाएंगे, कई दुकान में जाएंगे, किसको प्रसाद भी खाना है। तो इस प्रकार नारद जी श्री सनातन गोस्वामी हमको समझाते हैं, स्वयं देवर्षि नारद जो भगवान के मन ही है साक्षात, उन्होंने और अभी तक जब से सृष्टि सृजन हुआ है अभी तक समग्र ब्रह्मांड में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी में एकमात्र दी मोस्ट सक्सेसफुल प्रीचर श्री नारद जी। हाँ, उनके किसी को टारगेट किए फेल होगा भी वाई नहीं ना, वो जिसको प्रीचिंग करेंगे वो तो हो तो फिर बनेगा। व्यास भी उनके शिष्य है, वाल्मीकि भी उनके शिष्य है, ध्रुव भी उनके शिष्य है, प्रहलाद भी उनके शिष्य है, रेकर्ड उनका है। मृगारी जो मार रहा था पशु को, मार मार करके तड़पा तड़पा कर कर रहा था, उनको भी सभी जगह में, और राक्षस असुर देवता मनुष्य और दिव्य लोक से लेकर के अधम लोक नाग लोक पर्यंत कोई लोक में बेरोक टोक उनका ट्रैवलिंग है। कहीं भी जाए सभी उनको सम्मान करें। वही देवर्षि नारद, द करंट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, अभी ताजा न्यूज मिलना है, इंफॉर्मेशन पाना है तो एक ही एजेंसी है नारद जी। हाँ, यहां तक कि भगवान कृष्ण के समय में कंस भी जब नारद जी उनके पास आया तो उठकर के सीट में खड़े हो गया, उनको पूजा करने के लिए दौड़ा सम्मान करके, वो जानते थे। और नारद जी निडर आ गए उनके घर में, उनके सीधा वो बैठा था कंस, उठ करके प्रणाम करके पूजा, उन्हें जानते मैंने लेट मत, कितनी जल्दी में हूँ पता है ना, हाँ मैं बहुत जल्दी, तो केवल आपके प्रति मेरा विशेष स्नेह है, बहुत लगाव है, इसलिए मैं आ गया आपके पास एक बात बताने के लिए। हम जानता हूँ आप तो बहुत बादशाह, बात बताएं, बताइए कैसे बात, कैसे आना ना, क्या बताऊँ कंस, मैं तब जानते मैं तो हमेशा ट्रैवलिंग में हूँ रहता हूँ, आता रहता, आते समय वैकुंठ से आ रहा था, मैंने आते समय रास्ता में एक भारी मीटिंग चल रहा था, मैं कहा सुमेरु पर्वत पर, मेरु पर्वत में, मेरु अंचल में, मेरु पर्वत में भारी सभा चल रहा था, मैं भी गया, मुझे भी आसन में बैठा, मैं भी मीटिंग अटेंड किया। तो मुझे क्यों बता रहे मीटिंग अटेंड का ना, अरे मीटिंग का एजेंडा टॉपिक जो था ना, क्या था ना, एक ही एजेंडा था ना, क्या ना, कंसबद्ध हो, कंस के सामने बोलता तुझे मारने के लिए ही मीटिंग बैठा था, तुझे मरवाने के लिए। अब बताओ महाराज कंस जिनको एक ये सुनाई पड़ा था आकाशवाणी मरने करके, वो अपने विवाहित बहन के गला काटने के लिए इमीडिएट तैयार हो गया, और उनको बोलते हैं कि आपके पास मीटिंग में नहीं बैठा था, और प्रिंटआउट लेकर आया मैंने, जब मीटिंग का रेजोल्यूशन पास हुआ ना, बोले प्रिंटआउट लेकर आया आपका कॉपी आपको देने के लिए, योर कॉपी अटैच्ड, अब दे रहा हूं आपको लीजिए। क्या डिसीजन हुआ, डिसाइड हो गया, सारे देवताओं ने बैठ कर डिसाइड किया, विष्णु भी थे, अब डिसाइड हो गया तो जब बद करेंगे मारेंगे, विष्णु बोले मैं हूं आपके साथ, इसीलिए सारे देवताओं अभी आपके परिवार में आए, मैंने जदुवंशी ये सब बोले, अभी तो भारतवर्ष में दो ही कुल है, देवकुल और असुर कुल, कुछ आपके गोष्ठी के, बाकी सारे देवता, बोले आपके पिताजी भी, आपके ये सब भाई बहने सब तो देवता ही है। ऐसे पाठ पढ़ाए, ऐसे इन्फॉर्मेशन दिए, कंस बेचारा अभी दो मिनट पहले अपने जीजाजी बोले, जीजाजी को अभी दो मिनट ही हुआ था विदा किया था, वसुदेव को विदा किया था, लेकिन ऐसे पाठ पढ़ाए कि बिल्कुल बुद्धि फेर गया, तुरंत दौड़ा मारने के लिए, और महानृशंस हत्या में लुट गया, जुट गया। ऐसे नारद जी की क्या करामत, ऐसे किसको भगवत भक्त बना देते हैं किसी को, तो उनको भी उद्धार किए कंस, कभी ऐसे बात नहीं है, तो सभी के उद्धार में नारद जी लगे हैं। तो इसे सबसे प्रख्यात प्रचारक और परिव्राजक श्री नारद जी का दौरा शुरू हुआ है, वो उनके एक ढूंढना शुरू किए उन्होंने, उनके नारद जी का ट्रैवलिंग शुरू हुआ, किस चीज के लिए, किस चीज जानने के लिए, हाँ कौन भगवान के कृपा पात्र वास्तविक है उसको ढूंढने के लिए, तो उन्होंने वो यात्रा शुरू की, तो नारद जी की यात्रा। इस नारद जी की इस यात्रा के दौरान कौन भगवान के कृपा पात्र है, उनके लक्षण के साथ और उनके सारे पहचान के साथ उनको जानने के लिए नारद जी जैसे प्रगत भक्त, उन्होंने ढूंढना शुरू किए, यात्रा शुरू किए, और शुरू करके माघ मास के त्रिवेणी संगम तीर्थराज प्रयाग से उस ब्राह्मण देवता के पूजा और आराधना से लेकर के उन्होंने ट्रैवलिंग ढूंढना शुरू किए। अब इस भूमंडल में ये दो ही प्रख्यात भक्तों को उन्होंने देखे, उनको जांच किए, उनको प्रशंसा भी किए, लेकिन प्रशंसा करके उनसे जो रिपोर्ट लिए पता चला कि ये तो कमी है, उनके अंदर कृपा नहीं और भी उनसे बड़े हैं। तब इस भूमंडल इस पृथ्वी लोक को, इस भूलोक को त्याग करके अभी देवलोक को जाने के लिए उन्हें तैयार हो रहे हैं। अब देवलोक का बात काल कहेंगे। हरे कृष्ण। किसका कोई प्रश्न है? अगर टाइम पर ना छोड़े तो कल ना आए, इसलिए मैं बिफोर टाइम छोड़ता हूँ। हाँ, लेकिन आप लोग को भी समय लगेगा ना घर पहुंचने में, तो इसलिए हाँ आप तो सर नाराज जी नहीं है कि फटाक से पहुंच जाएं, आपको तो दिल्ली का ट्रैफिक भी लगेगा है ना? नहीं किसी का कोई जिज्ञासा हो किसी? हाँ जी,
जैसे पक्षी फारस की हो, जैतपुर का भगवान के दर्शन हुए थे, तो क्या वो पिछले जन्म में कुछ लोगों के ऐसे कर्म थे कि जो एकदम गर्व भी दर्शन हो गए भगवान के?
निश्चित होगा, पिछले जन्म कर्म फल, भगवान की कृपा कोई कर्म फल के ऊपर तो निर्भर नहीं करता। भगवान की कृपा का कोई जरूरी नहीं कि उनका कर्म हो तभी भगवान कृपा करेंगे। भगवान की कृपा सभी नियम से परे होते हैं। वो परीक्षित महाराज भगवान के नित्य पार्षद थे, तो उनके ऊपर कृपा करना उनसे बड़ी बात है। उनके लोग थे, उनके ऊपर कृपा कर ली उन्होंने, है ना? नहीं कोई जरूरी नहीं कि वो इसे ऐसे पुण्य कर्म करेंगे तो भगवान आएंगे बचाने के लिए। अंत में ये प्रश्न पूछना चाहिए, जिन परीक्षित महाराज जन्म होने से पहले भगवान के दर्शन कर लिए, उनको कहा गया है विष्णु रात और सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म रात, तो भगवान के ऊपर इसे विशेष कृपा था, जन्म से पहले ब्रह्मास्त्र से बच गए, इतने अमोघ अस्त्र से। तो ये छोटा सा 5 साल का सिंगी वो बोल दिया, उससे बच नहीं सकते थे? इतने महापराक्रमी भगवान के कृपा पात्र थे, है ना? जन्म से पहले उनके दर्शन किए थे, और कितने बार कृष्ण को मिले, कितने बार भजन किए, सारे जुड़श्री महाराज दिन सभी अपना अपना आशीर्वाद सब दिए, है ना? परीक्षित को एक ही तो लड़का था उनके, तो मरते समय में फिर क्यों नहीं बच पाए? प्रभु जी ने पूछ रहे हैं, इसके पीछे ये बड़ा रहस्य है, क्योंकि परीक्षित महाराज का सामर्थ्य भी था, वो चाहते तो इस ब्रह्म साहब को काउंट्रैक्ट कर सकते थे, कर सकते थे, उनको दंडित भी कर सकते थे और तक्षक को भी मार सकते थे पहले, ऐसे अपने शक्ति था। केवल इतना ही नहीं, यहां तक वर्णन आता है, उन्होंने जो बैठे थे गंगा किनारे, एक ऐसे होते ना जिसको बोलते हैं सांप काट देने से ठीक करने वाले, गुनीगारडी, क्या बोलते हैं आप लोग उसको? दर्द निकालते हैं, ठीक कर देते हैं बिल्कुल। कितने पॉइजनस सांप काटे, वो ऐसे मंत्र करेंगे, मंत्र शक्ति से वो ठीक करने, और एक मन आ रहा था कि व्यक्ति तभी था, तक्षक जब आ रहा था वो भी आ रहा था, और रास्ता में भेंट हुआ उन दोनों का। आप जाएंगे शुक्रताल में, जगह है, वो गांव है, वो दोनों भेंट हुए, वो उनको पूछा, बोला किस लिए? मैंने जाता हूँ, राजा बैठे हैं, तक्षक का आकर काटेगा, मैं ठीक कर दूंगा। बेकार बात, तक्षक कोई ऑर्डिनरी सांप है क्या? काट दे, कुबरा है, काट दे, ठीक कर देंगे। अरे मेरे मंत्र इसी मंत्र है, मैं भी ऐसे मंत्र सिद्ध किया हूँ, कोई भी सर्प हो, बोले तक्षक इस लोक का नहीं तो स्वर्गलोक के सांप है, दिव्य सर्प। अरे स्वर्गलोक हो, मर्तलोक कोई लोक हो, मेरे पास ऐसे मंत्र है, मैं तो काट दूँ। तो दोनों का झगड़ा हुआ, चैलेंज हो गया, बोला कैसे? बोला मैं ही तक्षक हूँ, आप तक्षक है? अच्छा, बोले मैं परीक्षा कर लो परीक्षा। तक्षक ने परीक्षा करना चाहा उनसे, वो ब्राह्मण से, तो बोले कैसे परीक्षा करें? तो रास्ते के चल दोनों जा रहे थे, एक पेड़ था, बहुत विशाल आम के वृक्ष था, पेड़ था, उस पेड़ में एक आदमी ने लकड़हार ने वो एक चढ़ करके लकड़ी काट रहा था, कुल्हाड़ी से पेड़ में चढ़ा हुआ था, लकड़ी काट रहा था, काट रहा था, तो वही सामने आया, देखे कि बिल्कुल फल फल ग्रीन भरे हुए हरी पत्ते पेड़ है, और उसमें एक लकड़हार लकड़ी काट रहा है। तो तक्षक ने बोला देखो मैं उसको दंशन करता हूँ, देखना मेरे प्रभाव क्या होता है, तो उसको ठीक कर देना, करके दिखाओ। तो उनके बातचीत दोनों ही चैलेंज करके तक्षक ने जा करके पेड़ के जड़ में चोट लगाया, काट दिया, काट दिया तो देखते देखते क्षण भर में वो पेड़ राख हो गया, बिल्कुल राख हो गया, और उसके जो लकड़ी काट रहा था ना वो भी हाथ में इसे कुल्हाड़ी ले इसे खड़ा, वो भी राख हो चुका था, पूरा राख, ऐसे हाथ लगाओ तो आशीष, आस को राख ही बोलते ना आपको, हाँ जल के राख हो गया क्षण भर में। इतने महा इस प्रभाव था, जलने के लिए आग दिखाना ही पड़ा, कन्वर्ट तुरंत, जिसे हाई वोल्टेज करंट लगा दो खत्म, तुरंत बदल जाएगा सब। तो ऐसे ही देखेंगे कर दे, तो बोला देखा मेरे ये प्रभाव, तो बोला मैं भी करता हूँ। तो उन्होंने मंत्र करके जब सिंच दिया थोड़े ही पे जल, तो क्षण भर में वो फिर हरी भरी हो गया पेड़, वो फिर लकड़ी काटने लगा। तक यक देख करके हताश हो गया, बोला बाप रे बाप, ये तो सही में ठीक कर दिया, वो तो राजा को बचा था कि ब्रह्मा साहब ही कट जाएगा। बोला मैं नहीं जानता ब्रह्मा साहब, ब्रह्मा साहब आपका ड्यूटी, आप काटेगा, आपको ब्राह्मण ने साफ दिया कि तक्षक दंशन होगा, तक्षक दंशन होगा, राजा मरेगा, मैं फिर बचा दूंगा उसको, मेरे शक्ति से बचा दूंगा, तेरा भी काम होगा, मेरा भी काम होगा। नारे मेरे बदनाम हो जाएगा ना, क्या तक्षक काटने के बाद भी बच जाए, ओहो मेरा भारी बदनाम होगा ना, लेकिन मैं तो मैं करूंगा, राजा मुझे खूब दक्षिणा देगा इसलिए मैं जाता हूं। कितना दक्षिणा देगा, अरे राजा क्या 5-10 हजार समूह ना, मैं तो 20 हजार देता भाई लेकर जाओ। कहा कि जा रहे यहीं से इतने क्यों चल कर जाएगा, तो इतने धन डबल दे कर तक्षक ने विदा किया, आपने बदनाम नहीं होगा करके। तो ऐसे ऐसे लोग भी थे जो बचा सकते थे, इस धरती पर ऐसे ऐसे मंत्र भी था जो तक्षक काटने के बाद भी बचा सकता था। और परीक्षित महाराज स्वयं इतने सामर्थ थे कि उन्होंने इस काउंटर आर्ट कर से सांप कोई अकाम ही कर सकते थे, उसको कोई काम नहीं करता, उसको डीएक्टिवेट कर देते ब्रह्म साहब को। और ये बात जब छोटे बालक के पिताजी समीक ऋषि के पास होंगी जब आया, उनको पता चला तो उन्होंने बहुत दुखी, बोले तू नालायक कहीं के बदमाश, इतने बड़े भक्त राजा राजर्षि, उनको आप ऐसे कैसे बोल दिया, अरे ये तो बहुत गड़बड़ी, क्या करूं मैं, कोई खबर भेजता हूँ, ओ कुछ कॉन्ट्रैक्ट करे, गुस्सा करे, तब तक तो आपके अपराध बच जाएगा, तो बड़े अपराध कर दिया, लेकिन मैं जानता हूँ वो कभी ऐसा करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि भक्त है। समक ऋषि कहते हैं कि मैं जानता हूं महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भक्त हैं, और जो भक्त है उनका लक्षण क्या है, वो श्रीमद भागवत के प्रथम स्कंद के 18 अध्याय का 42 नंबर श्लोक आप देख सकते हैं। उसमें परीक्षित महाराज के चलते उच्च कोटि के भक्तों का सिम्टम्स क्या होना चाहिए बताते हैं समक ऋषि। उसमें बोलते हैं तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता क्षिप्ता हतापिच, प्रतिशोध नाश्य कुर्बंती दद भक्ता प्रभवी प्रभवो पिहा। कहते हैं कि जो तद भक्ता भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं, महाप्रभावशाली बलशाली सामर्थ्यशाली होते हुए भी वो नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे ना, तिरस्कृता, वो बदला लेने के लिए विचार नहीं लाएंगे, कोई एक्शन नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे ना, तिरस्कृता होने पर भी, तिरस्कार समझते ना, कोई आपको तिरस्कार किया, तिरस्कार करना अपमान करना, खूब गाली दिया, भरी सभा में खड़े करके विज्जित किया आपको, उसमें तिरस्कार करना, ऐसी तिरस्कार किया बेमतलब के, कोई बात नहीं, कुछ नहीं करेंगे, नास्यतत् प्रतिकुर्बंती, कोई प्रतिकार नहीं करेंगे उसके विरुद्ध में, भक्त है बोले छिड़के सहन कर लेंगे, इतने तिरस्कार को भी सहन कर लेंगे, कोई बदला नहीं लेंगे, तिरस्कृता विप्रलब्धा, विप्रलब्धा का अर्थ है विप्रलब्ध मतलब चिटिंग, कोई सरासर उनको ठगे, वो भी समझे कि मुझे ठग ही रहा है दिन दोपहर में, उनको पता भी चलेगा और ठगेगा भी, लेकिन फिर भी बोलेंगे चलो बेचारा यही है ठगना चाहता, छोड़ दें, कुछ भी प्रतिकार नहीं करेंगे। तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता, कोई उनको साफ भी दे दे बिना मतलब के, तब भी कोई प्रतिकार नहीं करेंगे, बोले कोई बात मेरा दुर्भाग्य होगा मेरे सुने। सप्ता क्षिप्ता, कोई अक्षिप्त करे, अक्षिप्त मतलब कोई उनको उनको ब्लेम करे, ब्लेमिंग, आप किए नहीं तुम्हीं ने किया, अरे मैं किया ही नहीं, झूठ मूठ में आपको कोई क्या ब्लेम मत है, ब्लेम के हिंदी में क्या कहेंगे? कलंक लगा, आरोप, करेक्ट, मिथ्या आरोप, दोषारोपण करेगा, बेमतलब का है ही नहीं। जैसे भगवान के ऊपर किए थे ना, वो मणि चोरी किए करके सारे दिन वाले यही मणि चोरी के मर्डर भी किया, मणि चोरी करके है किए नहीं थे, तो इस पर आक्षिप्त करना, उनको दोष देना, दोषारोपण करना, कलंक लगाना, बोले ऐसे भी कोई करे तब भी बोलेंगे चलो कोई बात ना, से तत्पति कुरबंती तो भी प्रतिकार नहीं करेंगे। तिरस्कृता, विप्रलब्धा, सप्ता, खिप्ता, हतापिच, कोई उनको मारे भी तब भी नहीं कुछ करेंगे, बोले कोई बात नहीं। ये भगवत भक्तों के लक्षण है। तो इसलिए परीक्षित महाराज कुछ नहीं करने वाले हैं, तो सारे व्रत तो भगवान जब उनको गर्भ के अंदर बचा देते, अब क्यों नहीं बचाना चाहते हैं? ये परीक्षित महाराज स्वयं इस बात को कहते हैं, बोले हे प्रभु, उनको उनको तो पता नहीं था ये साफ दिया करके, वो तो अपने घर में चले गए थे। जब समीक ऋषि ने एक मैसेंजर भेजे, उनको बताया कि बताओ कि ऐसे ऐसे वीक डे का नोटिस मिला है आपको, अक्षय दंड से मृत्यु हो, सुन करके परीक्षित महाराज इतने प्रसन्न हुए, बोले हे प्रभु, आज मैंने आपके कृपा का एहसास समझ रहा हूँ, मेरे ऊपर आप कितनी कृपा करते हैं, मैं तो भूल गया था, राजकाज में फंस गया था, मैनेजमेंट में आपको भूल गया था, आप मुझे याद दिलाते हैं कि नहीं, तेरे कर्तव्य है भजन करना, भागवत श्रवण करने से क्या कल्याण महाकल्याण कराना चाहते हैं, मैं तो भूल गया था, आप कृपा करके छोटे बालक को माध्यम बना करके, निमित्त बना करके मुझे याद दिलाए। अगर आज परीक्षित महाराज आपने सामर्थ्य से बचा देते, आज आपका सामने भागवत होता, दुनिया में भागवत को प्रकट कराने के लिए परीक्षित महाराज जान बुझ करके स्वीकार किए, नहीं तो भागवत इस भारतवर्ष में नहीं आ पाता। तो भगवान ने श्री भागवत को प्रकट कराना चाहते थे, कैसे कराएंगे? आपने शुद्ध भक्त को बोलकर, भाई तुम तो तुम्हारा जीना मरना क्या होता है, लेकिन तू इस प्रकार की लीला करोगे तो दुनिया में भागवत आएगा। तो इसलिए परीक्षित महाराज को चुने, जिनको भगवान ने स्वयं गर्भ से लेकर आए थे, तो ही उनके निजजन के द्वारा ही इस प्रकार के हम जैसे पतित जन को उद्धार करने के लिए भागवत को दे गए। जैसे लोक में कहावत है ना, माताजी लोग से जानते होंगे, जैसे आजकल तो पता नहीं करते हैं, जिसके घर में शादी करके नई बहू आई, बहू आएगा तो सास जो है पुराना मैच्योर्ड, वो उनको ये समन उनका घर का नई जानता नहीं ना कि इसे क्या व्यवहार रखना चाहिए, तो उनको सिखाने के लिए वो कोई गड़बड़ कर दे डांटने, किसको डांटेगी? आपने बेटी को है ऐसे रखते हैं, ऐसे इधर करते हैं, ऐसे उठा कर रखते हैं, उल्टा रख दिया, अपने बेटी को दिखा कर डांटेगा? बहू समझ गया कि डोज तो मुझे ही है, डोज मुझे ही है। ठीक, अब भगवान जब हम जैसे पतित लोगों को सिखाएंगे तो कैसे उदाहरण देंगे? तो आपने ही लोग को लिखें, परीक्षित महाराज जैसे अपने निजजन को इस प्रकार से ड्रामा करवा करके हमको सिखा दे रहे हैं। ऐसे परीक्षित महाराज को साफ क्या लगेगा, उनको ब्रह्म साफ क्या, कुछ भी नहीं होगा, वो तो उनके जन है। ओके, और कुछ? सब सीरियस हो गया लगता है। चुप बैठ।
मैंने जान के कुछ करा था, इसलिए मैं लोगों को थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड भी मिलेगा। बहुत अच्छे प्रकार से महाराज के हैं।
आपको अच्छा लगा? कोई ऐसे में आपके इच्छा के विरुद्ध तो कोई ऐसे विषय तो नहीं ले रहा हूँ ना, आपको एक्सेप्टेड पसंद है, चलेगा ना? चेंज करें, इस प्रसंग को आगे बढ़ाए या चेंज करें? तो अप्रूव्ड है? हाँ जी, अप्रूव्ड है। हमारा सभी के मन में तो प्रश्न भी उठना चाहिए कि भाई हम भक्ति करेंगे कृपा प्राप्त हुआ कि नहीं, है ना? अब नारद जी जब ढूंढ कर दिखाते हैं लक्षण, कृपा के लक्षण क्या है, इसको जानना कितने जरूरी है ना, नहीं तब तो पता चले हम किस पानी पर है, क्या कर रहे हैं हम लोग। अब आगे आगे ऐसे विशेष बातें हैं जब देवताओं के साथ बातचीत होगा, और आगे बढ़ते जाएंगे नारद जी ढूंढते ढूंढते। पता नहीं आपके पास तो समय कम है, हम नारद जी के अन्वेषण पूरा हो पा गया कि नहीं। मैंने एक बार इस प्रसंग पुणे में गया था, 9 दिन तक किया था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया था 9 दिन में। आपके पास 2.5 दिन है, क्या होगा पता नहीं। लेकिन थोड़ा वो थोड़ा डिटेल चल रहा था, मैं थोड़ा संक्षेप में करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हो पाएगा कि नहीं, पूरा तो नहीं होगा, देखते हैं कहाँ तक जाता है। हरे कृष्ण। समवेत भक्त वृंद की निताय गौर हरि प्रमा।
महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे प्रकार से अगर कोई समझदार व्यक्ति उपलब्ध है यहाँ पर।